करो ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो मीठी बातों पे बिंदु धरो बिंदु बनो से याद करो ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो शांति। गीता बहन जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, बहुत धारणा युक्त मर्यादा युक्त आपका जीवन है। मधुबन में होने वाले सभी कार्यक्रमों में, चाहे वो ब्राह्मणों के होते हैं चाहे वो मेहमानों के कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप एक बहुत अनुभवी वक्ता की तरह अपने सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आप बाल्यकाल से ही 14 वर्ष की आयु से ज्ञान में आए, सूरत से आपको ज्ञान मिला और प्रारंभ में आपने अहमदाबाद बड़ौदा सूरत में सेवाएं दी और 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन की आप संचालिका रहीं और 1993 से ज्ञान सरोवर में आप आवास निवास विभाग में बहुत भाई बहने परिचित भी हैं। वहां के रिसेप्शन में आप प्रभारी के रूप में सेवाएं देते रहे और अभी कुछ वर्षों से शांतिवन में आप निवास करते हैं और वहीं से अपनी सेवाएं देते हैं। आप बिजनेस इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और बिजनेस इंडस्ट्री विंग के जो भी कार्यक्रम होते हैं, अभियान निकलते हैं, उसके पहले आपने युवा पदयात्रा में भी अपनी भूमिका निभाई थी, सोमनाथ से लेकर नई दिल्ली तक उसका नेतृत्व किया था। अनेक विषयों पर आपके वक्तव्य होते हैं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर आप गए हैं, तो आप अभी हमें क्लास कराएंगे। एवर रेडी हम बनने के लिए, फुल स्टॉप कैसे लगाएं, हम सभी को ये समय है। बाबा कहता है अचानक और एवर रेडी का, कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। तो कैसे रहेंगे वो विधि हमें गीता बहन जी सुनाएं।
ओम शांति। बहुत अच्छे त्योहारों के दिनों में आप आए हैं। बाबा के बेहद घर में त्योहार भी मनाएंगे और तपस्या भी करेंगे, दोनों साथ साथ। मधुबन सच में स्वर्गाश्रम है। बहुत शुरू शुरू में हम मधुबन आते थे तो यहाँ सामने लिखा हुआ होता था मधुबन स्वर्गाश्रम। बाप दादा का घर, सोहम बच्चों का घर। तो पिता के घर में मनाने भी आते हैं और बनने भी आते हैं। हमारा मनाना भी इतना ज्ञान युक्त होता है और पवित्र योगी आत्माओं के संग होता है कि ये त्योहार मनाना भी स्थिति बनाना है। आनंद भी है और बाबा याद भी है। दुनिया को हम बता सकते हैं कि आध्यात्मिकता शुष्क नहीं है, है ना? ड्राई समझते हैं ना कि आध्यात्मिकता, तपस्या, वैराग्य ये सारे नीरस है, शुष्क विषय है सर। पर हम बता सकते हैं कि उसमें सच्चा आनंद कैसे मिलता है। वो आनंद जो बहिर्मुख भी न करे, बॉडी कॉन्शियस भी न बनाए, वो आनंद जो हमें ऊंचा उठाए और बाबा में मग्न बनाए। रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक है ना, यादगार भी क्या है, पूरा हफ्ता त्योहार ही त्योहार है, है ना? ये संगम का यादगार है कि पवित्रता का बंधन जो स्वीकार करेगा उनके जीवन में रोज त्योहार है, हर बार त्योहार है। और उसका समापन है जन्माष्टमी, है ना? संपूर्ण आनंद की दुनिया, संपूर्ण सुख की दुनिया। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि भक्ति मार्ग में जो भी यादगार है वो इस समय संगम की यादगार है। संगम युग में हमने जो कुछ किया उसकी वैसी ही यादगार बने। तो हर त्योहार पर हम चेक भी करते हैं अपने आप को कि त्योहार मनाने में कितना आनंद आता है। कितने भी दुखी लोग हैं, अभाव में जीते हैं, पर हमने देखा त्योहार पर कुछ क्षणों के लिए सारी दुख की बातें भूल जाते हैं और आनंद बनाते हैं। हमें भी सबक मिलता है कि बातें कितनी भी आए उसका गम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बाबा मिले हैं, जो सत्य ज्ञान मिला है, जो पवित्र परिवार मिला है, जो सत्कर्मों की सेवा मिली है, हमें उसका आनंद होना चाहिए। यादगार मनाने वालों को आनंद है, जिसकी यादगार है वो पुरुषार्थ करने वालों को आनंद है, उस पुरुषार्थ में आनंद है। ये चेक करना है कि मुश्किल लगता है, भारी लगता है, रोज रोज बाबा को कंप्लेन करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं बाबा से, या सच में पुरुषार्थ में आनंद मनाते हैं, ये भी एक चेक करने की बात है। उनको दीवा जगाने में, रोशनी करने में आनंद है, हमें ज्योति स्वरूप बनने में आनंद है, ये देखना है अपने आप। वंडर ये है कि वो पवित्र बनते नहीं है और यादगार मनाने का आनंद लेते हैं। हम पवित्र बनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। एक है समझ से पुरुषार्थ करना और एक है कि खुशी से करना। हम खुशी से इस जीवन में चले। मर मर के नहीं, कंप्लेन कर कर के नहीं, खुशी से। और जो चीज खुशी से हम करेंगे वो ही लंबे समय तक कर सकते। खुशी का अनुभव नहीं होगा तो हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात कि खुशी से नहीं करेंगे तो मगन भी नहीं हो सकते। अगर बाबा में खो जाना है, मगन हो जाना है, मस्त हो जाना है तो आनंद चाहिए। इसलिए बाबा, दादियां, दादी गुलजार जी से भी सुनते हैं, दादी रतन मोहिनी भी रोज पक्का कराती है कि चेहरा खुशनुमा रहना चाहिए। बाबा भी कहते हैं ना, खिला हुआ गुलाब। जो अपने आप सौंदर्य बिखेरे हैं, अपने आप सुगंध फैलाएं। एक खिला हुआ पुष्प कितना अच्छा लगता है। उससे और कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है कि मेरी सुंदरता का आनंद ले, खुशबू का आनंद ले, उसका कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है। उस पुष्प का होना ही सौंदर्य बिखेरना है, आनंद फैलाना है, खुशबू फैलानी है। हम अपना अस्तित्व ऐसा बना दें कि हम घर में हो, सेंटर में हो, सेवा में हो, नौकरी में हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, हमारी उपस्थिति, हमारा अस्तित्व ही आनंद दे, खुशी दे। बाबा कहते हैं ना, त्याग दिखाई देता है तुम्हारा, भाग्य नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा त्याग देखते हैं तो लोग कदम पीछे कर लेते हैं कि हम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको त्याग दिखाई देता है ना कि वहां जाएंगे तो इतना छोड़ना पड़ेगा, रोज उठना पड़ेगा। माना वो हमारी मेहनत देख रहे हैं, अभी भी हमारे से मेहनत का अनुभव उनको होता है। भाग्य को देखें, प्राप्ति को देखें, छोड़ा क्या बल्कि पाया क्या है, है ना? प्राप्ति कितनी ऊंची वो दिखाई दे। तो प्राप्ति तो हर किसी को चाहिए, लाभ तो हर किसी को चाहिए ना, तो दौड़ के आएंगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो ये एक शिफ्ट चेंज हम ब्राह्मण बच्चों में अब दिखना चाहिए। इसको कहते हैं नेचुरल पुरुषार्थी। हठ दमन का पुरुषार्थ नहीं, बेशक पुरुषार्थ तो करना ही है, पर पहुंचना है इस स्वरूप पर कि नेचुरल लगे। हम ये जीवन जी रहे हैं ज्ञान योग की, त्याग की, तपस्या की, हम अपना अधिक समय, शक्ति, धन, मन, वचन, कर्म इसमें ही लगाते हैं। अब हम लौकिक दुनिया में, भौतिक बातों में, सांसारिक उपलब्धियों में नहीं इतना लगाते। हरेक समझ चुके हैं तो हमें, हम वो दिशा में निमित मात्र लगाते, जो आवश्यक है वो ही लगाते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो चाहते हैं, बाबा जो पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, वो प्राप्त करने के लिए हम योग्य बन जाएं। उसकी ही तैयारी हम कर रहे हैं। जो बाबा कहते हैं हम जीते जी बाबा के बताए हुए मार्गदर्शन पर अपनी गति सदगति की तैयारियां कर रहे हैं। भक्ति में तो भगवान से मांगते थे, है ना, हमें पार कर दो। भगवान को कहते थे ना कि अब तक निभाया है, आगे भी निभा लेना। हम बाबा को कहते थे, बाबा कहते तुम निभाओ, मैं तो निभा ही रहा। पर हम भगवान को कहते थे कि अब तक निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब समझ में आ रहा है कि हम खुद ही खुद को पार करने की पुरुषार्थ यात्रा कर रहे हैं। और ये भी हम समझते हैं कि जीवन भर जो याद हम करेंगे वो ही अंत में याद आएगा। अंत में ऐसे ही बाबा याद नहीं आएगा। हमारी जीवन भर लगन कहाँ लगी हुई है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। दिखने में तो लगता है कि भई हम त्याग में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, पर ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि ज्ञान पाने के बाद, बाबा के बनने के बाद हमारी अंदरूनी लगन कहाँ लगी। अंतिम गति का आधार तो जीवन भर की स्थिति है। और स्थिति बनती है आंतरिक लगन से। सच में हमारी लगन कहाँ है? बाबा से है, ना मान शान से है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में है, ये बाबा के बनने की बात है। पहले की बात तो पूरी हो गई, बनने के बाद भी लगन कहाँ है? जिसकी जो लगन होगी वो ही वो प्राप्त करेगा। एक भाई थे जिसको अमेरिका जाने की बहुत लगन थी, बहुत चाव था, इच्छा थी। जैसे ही शादी का कोई विदेश से मांग आई, अमेरिका जाने की इच्छा थी, तो उसने तुरंत स्वीकार की, क्योंकि इच्छा तो थी ना अमेरिका जाने की। और वहां का ही संबंध लेके आए कोई, शादी हो गई, विदेश गए। जब वापस आए, मिले, तो कह रहे थे कि पत्नी इतनी अच्छी नहीं है, कंप्लेन कर रहे थे, ये है वो है ऐसी वैसी है। हमने उनको कहा, आपको तो अमेरिका चाहिए था ना, आपको अच्छी पत्नी कहाँ चाहिए थी? जो चाहिए था वो मिला। हमें क्या चाहिए बाबा, हमें क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा बाबा। बाबा तो तथास्तु करने वाला है, तो वरदाता है, पर मुझे क्या चाहिए। और वास्तव में तीन चीजें हैं, बाबा क्या देना चाहते हैं, समय कौन सा है पाने का, ये समय क्या पाने का है, और मुझे क्या चाहिए। तीन चीजें हैं। बाबा तो किस लिए आया है, बाबा किस लिए आया है। बाबा कहते ना, मेरा मुख्य कार्य क्या है। बाबा तो ये देने आया है, पतित से पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, संसार को स्वर्ग बनाना, बाबा तो इसलिए आया है। बाबा पावन बनाता है, हमें देवता बनना है पुरुषार्थ करके, और हमारे देवता बनने से संसार स्वर्ग बनेगा। ये एक से जुड़े हुए काम है दूसरे। और संगम का समय स्पेशली किस लिए है, बाकी युग क्या है और संगम युग किस लिए है ना, ये समय का इंपॉर्टेंस। भगवान का आदेश हम जानते हैं, समय की मांग क्या है, चेंज का पीरियड है, टोटल चेंज का पीरियड है। तमो प्रधान से वापस सतो प्रधान बनने का समय है, ये और युग में नहीं होगा। ना मान शान पद प्रतिष्ठा पोजीशन पावर और युगों में भी मिलेगा, पर संगम युग अपने आप को जितना पवित्र, जितना महान, जितना श्रेष्ठ, जितना दिव्य बनाना चाहे उसके लिए, ये और युग में नहीं हो सकेगा। और हम सबको समझाते हैं कि सब कुछ पा लिया पर खुद का सुधार उद्धार नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, यही बताते हैं ना सब प्रोग्रामों में, हर प्रोफेशन वाले को यही बताते हैं हम कि अपने पर ध्यान दो, अपने को बनाओ, है ना? हमें भी ये टाइम सिग्नल याद रखना है कि ये टाइम सिग्नल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्वयं के सुधार उद्धार के लिए। तो ये लक्ष्य मुझे पक्का रखना पड़ेगा। दुनिया डाइवर्ट नहीं करेगी अब हमें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए समझ लिया है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये ओम शांति वाले हैं, इनके ये नियम हैं, मर्यादाएं हैं। लोगों ने तो हमारे लिए फाइनल कर लिया है कि ये पवित्र योगी लोग हैं। अब हमारा क्या है? लोग डाइवर्ट अब हमें नहीं करेंगे, अब हम ऊपर नीचे होते हैं आपस में ही एक दो को देखकर। अब मुझे अपनी मजबूती रखनी है कि किस लक्ष्य के लेके, किस लक्ष्य को लेके हम चले थे। किस लक्ष्य को लेके हम इस जीवन में चले, चलते चलते, क्योंकि जीवन बनाना है, जीवन भर का पुरुषार्थ है। हमें तो जीवन बनाना है ना। फिल्मों में एक्टर देवता बनते हैं ऐसा तो नहीं ना, हमें तो जीवन बनाना है, रियल में देवता जीवन बनानी है। तो जब जीवन बनाना है तो जीवन भर का पुरुषार्थ चाहिए। तो मुझे अपने लक्ष्य को मजबूत रखना है और रोज रिवाइज करना है। बाबा के सामने बैठकर कि मैंने ये क्षेत्र क्यों चुना है, क्यों ये सफेद ड्रेस पहना है, क्यों ये बैज लगाया है, मूल उद्देश्य क्या है, ये मुझे रोज बाबा के सामने बैठकर पक्का करना है। बाबा भी पक्का कराते हैं, रोज बाबा पक्का कराते हैं। क्यों रोज पढ़ना है, क्यों रोज मुरली सुननी है, ताकि ट्रैक पर रहे, उतर न जाए पटरी से। लक्ष्य डाइवर्ट ना हो जाए, डाइल्यूट ना हो जाए। लक्ष्य डाइल्यूट होता है ना, कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं हो उसके लिए मुझे रोज रिवाइज कर। और हम जो बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के कहने मात्र से कर रहे हैं, दादियों के कहने से कर रहे हैं, निमित्त आत्माएं उमंग उत्साह भरती हैं उससे कर रहे हैं। शुरुआत तो ऐसे ही होती है, पर अब मैं किस आधार पर पुरुषार्थ कर रही हूं, ये चेक कर कि मेरा अपना लक्ष्य है, मेरी अपनी रुचि है, मेरा उमंग उत्साह है, मुझे बनना है। बाबा कहता है, दादियां कहती हैं, निमित्त कहते हैं, तो चार दिन कर सकेंगे, पर मेरा निजी लक्ष्य विषय है। तो तैयारी अंदर होती रहेगी, मैं बनती जाऊंगी। पिछले के पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि आदि से ब्रह्मा के बोल क्या थे, मैं बन जाऊं, समा जाऊं, बाप समान हो जाऊं। तो जो आदि के बोल थे वो अंत में स्वरूप बने। तो ये चीज मुझे भी करनी है ना, ये चीज हमें भी करनी है कि हम आए किस लिए, शुरू किस लक्ष्य से हुए। चलते चलते बाबा कहते हैं यात्रा तो जीवन भर की है, लंबी तो नहीं कहेंगे पर जीवन भर की है। टाइम तो जो है ड्रामा में निश्चित उतना ही रहना है, हम बने या न बने। पर साइड सीन को देखकर लक्ष्य तो बदल नहीं जाना चाहिए, तो रेडी हो सकेंगे, तैयार हो सकेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब लक्ष्य सिद्ध हो। लक्ष्य सिद्ध ना हो तो लोग मानेंगे नहीं कि आपने इतना पुरुषार्थ किया। इसलिए मुझे अपने आप को तैयार करना है ना, रेडी करना है। तो ये मौका है भट्टी में, मधुबन में, हम सब बातों से फारिग हैं, साइलेंस में रहते हैं। तो ये मौका है कि हम अपने आप को देख लें कि हम अपने आप को कितना तैयार कर सके। जो जैसा होगा वो ऐसा ही दूसरे को बना सके। इसलिए मुख्य मेहनत तो बनने की ही है। एक डाई बन जाती है फिर तो फटाफट हजारों चीजें कॉपी तैयार हो जाती। मास्टरपीस बनाने में ही मेहनत है ना। तो हम सब कौन है, मास्टरपीस है। संसार में जितनी क्वालिटी के लोग होंगे उनके आदि हम सब है। वो सारी क्वालिटी संगम युग में मिलेगी क्योंकि हम उनके कुल देवता है या देवियां है, उस वंशावली के आदि ब्रह्मा है। अपने आप को ही बनाना है। कितना स्पष्ट महसूस होता है कि सच में भगवान को कंप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है। उसने तो खुली ऑफर दे दी है, मैं नहीं बन पा रही हूं या कितना बन पा रही हूं, सारी बाजी हमारे ऊपर है। अब तो हम 2 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, हम कितना बन सके हैं। अपनी रिजल्ट खुद देखनी है। बाबा ने कहा कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, रिजल्ट अपने आप हमारे जीवन से दिखेगी, हमारी स्थिति से दिखेगी। बीच में काफी सालों तक बाबा ने 3 शब्द बार बार याद कराए थे आज के टॉपिक से संबंधित, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जो कुछ होना है अचानक होना है, ये ड्रामा की मेथड है। ये हर किसी के लिए लागू होता है। अचानक कभी भी कुछ भी, बाबा ने 3 बार कहा था कि बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बच्चे पूछते हैं ना, बाबा कब होगा, कब होगा। बाबा ने आखिर कह दिया कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ये अव्यक्त मुरली में है। ये एक डिसिप्लिन है एक टीचर की। इसमें बाबा कोई कठोर नहीं है, पर ये एक डिसिप्लिन है। टीचर ही पेपर फोड़ दे तो उसको थोड़ी योग्य कहा जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा हम नहीं बताएंगे। और उसके बाद ये बताना, याद कराना भी बंद हो गया कि अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, ये भी बाबा ने बंद कर दिया, क्योंकि बाबा ने टाइम सिग्नल बहुत बार याद कराए। बाबा बता के नहीं आया, बाबा बता के जाएगा नहीं। हमारा योग होगा तो पता चलेगा। और अचानक होना है इसलिए ही बाबा कहते हैं एवर रेडी बनना है। जो तैयार नहीं है, सिर्फ रेडी की बात मैंने तो अभी तक की। दुनिया में लोग तैयार नहीं हैं, तो अचानक जो भी होता है, आप रिजल्ट देखते हैं ना कि उनकी मनोस्थिति का हल क्या होता है। रेडी हो रहे हैं उस अवस्था में भी अचानक होता है, तो हम ज्ञानी आत्माओं पर भी क्या असर आता है पता है सबको। ड्रामा ड्रामा भी करते रहते हैं, संकल्प भी चलते रहते हैं, वर्णन भी करते रहते हैं और चलते भी रहते हैं, है ना? क्योंकि हम हो रहे हैं ना, तैयार बन नहीं गए। ये रिजल्ट है। नहीं रेडी होंगे तो बहुत शॉक लगेगा ना, असर आएगी। तो बाबा पहले से तैयार कर रहे हैं। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल माना जिसको जितना काल मिला है, जो जब से आया है, और कौन कब जाएगा किसी को पता नहीं। दादियों को मिला इतना लंबा समय, हमें तो नहीं मिलना है। हम ये एक्सक्यूज बहाना नहीं दे सकते हैं कि बाबा जितना दादी जितना हमें भी टाइम मिले तो हम भी बनेंगे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बनने वाले सेकंड में बनते हैं। जिस दिन से बाबा के बने हैं तब से बनते ही जाते हैं, क्योंकि बनने के लिए तो निश्चय चाहिए बस, परिस्थितियां नहीं। दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं फिर भी वैरागी नहीं है। बहुत दुखी हैं पर फिर भी कितने लोग योगी बनना चाहते, अनुभव है ना आप सबको। कितनों को आप कहते हैं, कितने बनते। परिस्थितियां बना नहीं सकती है, जो जाग जाता है, लक्ष्य बना लेता है, वो बनता जाता है। और एवर रेडी बनना है, अचानक आने वाली परिस्थितियों के बीच योग में बैठ के एवर रेडी नहीं बनना है। प्रैक्टिकल बातें भी चलनी है साथ साथ, है ना। अचानक आने वाली परिस्थितियों के बीच मुझे एवर रेडी बनना है तो मुझे अपने आप को समेटना है। सबसे पहला काम ये करना है, समेटना है। समेटने का अर्थ ये है कि जो वेस्ट है वो निकाल दें, जो जरूरी है वो रूहानियत से करते रहे। समेटना माना सब कुछ बंद करके बैठ नहीं जाना है। एक बार बिजनेसमैन अपने व्यापारी भाई बहनों की मीटिंग थी, दादी गुलजार जी आए थे, तो अपने भाइयों ने पूछा कि दादी आप बताइए कि समय अनुसार हम बिजनेस बढ़ाएं या समेट लें, क्या करें। दादी ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि जो जरूरी है वो अंत तक करना है, समेट के बैठ जाने की बात नहीं है। उसमें डूब जाना विस्तार करके वो भी बात नहीं। जो आवश्यक है खुद के लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, उतना करना है। ज्ञान में आते हैं तो नेचुरली हम काफी कुछ समेट जाते है ना, क्योंकि अपवित्र सारा निकल जाता है। आप देखेंगे तो कितनी चीजें जीवन में बंद हो गई सिर्फ ज्ञान में आने से, वरना कितनी वेस्ट नकारात्मक चीजें थी जिसके पीछे हम मन समय धन सब लगाते थे। बाबा के ज्ञान की शक्ति से कितना हम आते ही समेट गए। अब ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, इस ब्राह्मण जीवन में चलते रहने में अब चेक करना है कि अभी भी मुझे कहां समेटने की जरूरत है। अभी भी वेस्ट विस्तार कहां है जो जरूरी नहीं है, वो खुद अपना देखो। हरे थोड़ी जगह में बिठाते तो भी और खिसको और खिसको और खिसको करके कितने बैठ जाते हैं। तो समेटना है ना, तो अभी भी देखना है कि कहां विस्तार है जो जरूरी नहीं, कहां अभी भी व्यर्थ है जो जरूरी नहीं। चलो नकारात्मक तो नहीं है ऐसा हम मान लेते हैं, सत्य तो हरेक अपना जानते हैं। क्योंकि समेटा हुआ ही एवर रेडी हो सकता है ना, भी सामान पैक है तो चल पड़ेंगे, और खोल के रखा है सारा फैला के तो टाइम लगेगा ना समेटने में। कहीं ऐसे रहते पूरा कमरा ही सामान से भरा हुआ उनका होता है, पूरा सामान कमरे में फैला होगा। यहाँ चार दिन रहते हैं, छह दिन रहते हैं ना, तो भी पूरा कमरा भरा होगा उनका, बिस्तर बिस्तर सब आसपास। और कहीं ऐसे रहते हैं कि उनका समेटा हुआ ही है, निकाला यूज किया ठीक से पैक करके रख दिया। तो ब्राह्मण जीवन में भी क्योंकि एवर रेडी बनना है तो समेटा हुआ होना चाहिए, इच्छाएं समेटी हुई, इंटरेस्ट समेटे हुए, हमारे रस इच्छाएं शौक आदतें इसमें भी विस्तार होता है ना, तो समेटो। मैं एक स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट के हिसाब से मुझे किन बातों में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, मैं एक टीचर हूं उस हिसाब से मुझे किन बातों में जाना है किस में नहीं जाना, मैं निमित्त हूं तो मुझे क्या बातें देखनी है जाननी है सुननी है, कहां मुझे न्यारा होना है। अपना स्थान देखिए, अपना रोल देखिए, उस हिसाब से चेक करिए कि कहां विस्तार को समेटना अभी भी जरूरी है। और बाबा ने ही कहा समेटना और समाना। समा सके इतने हम गहरे हों, इतने उदार हों, हम समा सके। माँ बाप अपने बच्चों की बातें समाते हैं, हम समा सके। जो है जैसे हैं एक्सेप्ट करेंगे तो समा सकेंगे। जो है जैसे हैं इसी परिवार के संग मुझे संपूर्ण बनना है, और कोई संग तो बना नहीं सकता है। बाबा ने सबको स्वीकार किया, हम सबको, हमें भी स्वीकार कर तो समा सकेंगे, नहीं स्वीकारेंगे तो चल नहीं सकेंगे। लौकिक दुनिया में जो माँ बाप है, जो भाई बहन है, हमने स्वीकारा है। कोई लौकिक सर्वगुण संपन्न नहीं है, पर हम उनको चेंज नहीं करते हैं। भाई यही माँ बाप है और यही भाई बहन है। अलौकिक में भी स्वीकार करना, जो है मुझे उनके साथ ही संपूर्ण बनना, तो हम बातों को समा सकेंगे, नहीं तो चिंतन वर्णन चलता रहेगा। बाबा ने नहीं अभी पिछले संडे में ही कहा ना कि सोच सोच के वर्णन कर कर के बात को बड़ा कर देते, वातावरण बना के। तो इस प्रकार के विस्तार में जाने वाले फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगे। बहुत फोकस रहना है कि मैं तो इन बातों के लिए आई नहीं हूं यहां, और बाबा ने तो पहले से ही बताया है, बाबा ने कोई छिपाया नहीं है कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, पहले से ही ये महावाक्य है। यात्र में भी बाबा कह देते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कल पहले मुआफी, जो जितना बना है जैसा, ये तो पहले से ही बताया है ना। तो फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये तो निमित्त है साथ, सहयोग, सेवा। आज है कल नहीं भी रहेगा। मुझे उनकी कोई भी बातों से विस्तार में नहीं आना, बस स्कूलों में पढ़ते हैं, एक क्लास में 50, 60, 80, 100 विद्यार्थी होते हैं। फर्स्ट नंबर लेने वाला देखता नहीं है कौन पीरियड छोड़ रहा है, बाहर घूम रहा है, वो तो अपनी पढ़ाई में मस्त होता है। पढ़ के कौन कहाँ पहुंच जाता है, कौन किसका रहता है, है ना। ये तो पढ़ाई के साथी हैं, विस्तार में जाने का तो कोई कारण ही नहीं है। फोकस, केंद्रित रहना है, मैं किस लिए हूं यहां। तो बिंदु लगेगा तो मन समेटेगा, जीवन समेटेंगे तो मन समेटेगा। कर्म विस्तार के और मन को सार में रखना चाहे तो कैसे रहेगा। कर्म भी सार युक्त तो मन भी सार में दिखेगा। और दूसरा, खुद का विस्तार। चलो ये तो संगठन की साथियों की बात हुई, पर अपना है ना, जो मन में भरा है, बार बार याद आता है, कभी अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ, कुछ दर्द मिला, दुख मिला, आता है ना, बार बार बुद्धि में आता है। तो शांति से बैठकर समझो ये जो कुछ हुआ उससे क्या मुझे सबक सीखना है और आगे जाना है। और ये हुआ तो अच्छा है, मन उपराम हुआ बाबा के बने, वरना हम तो एक दो में ही लगे रहते। तो अपना मन साफ कर लो, ठीक कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, नहीं तो बिंदु नहीं लगेगा। तो महसूस करेंगे कि हम बाबा से जुड़े हुए ही हैं। मेहनत नहीं लगेगी, हम सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकेंगे। रोज रात को समेटते हैं, रोज सुबह विस्तार में जाते हैं। रात को समेटो अच्छी तरह, इसलिए कहते हैं निंद्रा आधी मृत्यु है। रात को समेट के लास्ट मोमेंट तक बॉडी से डिटैच होते हैं ना, निंद्रा में जाते, तब तक याद में रहने का प्रयास करें। ओम शांति। टाइम हो चुका है, दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। खुद और चिंतन करना।
कोई वस्तु वैभव ना कोई थूल साधन, साधना आराधना में सदा हो मन मगन। खींचे ना कोई वस्तु वैभव ना कोई थूल साधन, साधना और आराधना में सदा हो मन मगन। याद में तेरे डूबे रहे, याद में तेरे डूबे रहे, सबकी ये चाहना है ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
सभी एक हाथ की ताली से गीता बहन जी को धन्यवाद देंगे।